హల్లెలూయా 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 యేసు కే జలాల్ కే లియే జోర్దార్ తాళీయాں ऐ खुदा पाकरी आज तू जुम्बश कर आए हम सब खुदा अपने खुदा के जुल चुके उसके पाक रूह को जो हम सब की रहनुमाई के लिए ईदे पैंती को उसके दिन जमीन पर भेजा गया के मुस्तकिल तौर पर हर एक ईमानदार जो यसु पर ईमान लाता है लाती है वो खुदा का क्या बने जी मकदस बने हम सब खुदा के जुल चुकेंगे और उसके पाक रूह की रहनुमाई चाहेंगे ताकि आज खुदा का पाक रूह हम सब की रहनुमाई करे ताकि हम अपने दिल के उन तमाम अहाते में जगह में उस दिल में झांकने वाले बने कि कौन सी चीजें हैं जो हमें बाहर निकालने की जरूरत है और कौन सी चीजें हैं कि इस दिल में नई दर्ज करने की जरूरत है ताकि मसीह का उठना बैठना बोलना चालना हम में परवान चढ़ सके हम सब दुआ करेंगे खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूं आज इस घड़ी के लिए आए हुए तमाम खुदा खुदा तेरे बंदे और बंदियों के लिए बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो खुदा खुदा यहां पर मौजूद है तेरी आवाज को सुनने के लिए जो भी खुदा खुदा रास्तों में अभी खुदा खुदा दुनिया की खुदा खुदा कश्मकश में खुदा खुदा लालच में सुस्ती में लापरवाही में और खुदा खुदा हर तरह की वो बातों में जो खुदा खुदा उन्होंने अपनी जिंदगी में अवज़ल जानी ताकि आज तेरे कलाम की जिंदा आवाज को सुनने से खुदा खुदा शिनवा ना हो महरूम हो खुदावंद उनके लिए दुआ करता हूं कि वो खुदा खुदा तेरा पाक रूह उनको छुए उनको झुंझोड़े ताकि वो अपने दिलों की खुदा खुदा तमाम जगहों में खुदा खुदा तुझे वो दर्जा वो मकाम और खुदा खुदा अपने दिलों की सफाई करने वाले बने ताकि तेरे लिए एक जगह तैयार कर सकें अब आप आज सारा जलाल यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूं आमीन आमीन हम पिछले जुमे सीख रहे थे खुदा के कलाम में से कि मूसा को खुदा ने कहा कि पीतल का सांप बना और बनाकर उसे बल्ली पर लटका दे ताकि जो कोई उस पर निगाह करेगा वो उन सांपों के जहर से क्या हो जाएगा जी बच जाएगा और मूसा ने खुदा की दी हुई हदायत के मुताबिक क्या किया अमल किया वैसे ही आज हम नए अहदनामा में देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह के पीछे लोग भीड़ की मानद क्या है उसके पीछे पीछे हैं उसकी तालीम को सुन रहे हैं उसके कलाम को परख रहे हैं जांच रहे हैं आजमा रहे हैं कि ये जो कलाम करता है ये जो काम करता है क्या वे नबियों में से कोई नबी है जिसके बारे में बहुत से दूसरे नबियों ने क्या कहा था जी नबूवत की थी कि वो आएगा और उनको क्या करेगा जी खुदा की राह और उनको खुदा की बादशाही के बारे में बताएगा और उनके लिए अजीब अजीब काम जाहिर होंगे तो आज हम देखेंगे खुदा के कलाम में से कि मूसा को हदायत दी गई कि बल्ली पर सांप को बनाकर लटका दे और अनाउंस कर दे इश्तहार दे दे इस बात का ऐलान कर दे कि जो कोई उस पर निगाह करेगा वो क्या होगा जी जहर से बच जाएगा वो मौत का मजा नहीं चखेगा आज नए दामा में हम एक और मौजजे पर गौर करेंगे जो हमें यहन्ना की इंजील उसके 6 बाब में मिलता है जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह जब गलील की झील से तबराज की झील के पार गया तो क्या हुआ कि बड़ी भीड़ उसके पीछे हो गई क्योंकि जो बीमार थे लाचार थे हर तरह की मुश्किलात में थे वो मौजजात को हासिल करने के लिए उसको देखने के लिए क्या थे जी उसके पीछे पीछे जाते थे जब हम सारे वाक्या को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह पहाड़ पर चढ़ गया और उसके शिगिर्द वहां पर हैं और वो उनके साथ बैठ गया याद दिलाना चाहता हूं जब जब यीशु मसीह को आप किसी जगह पर बैठे देखेंगे चाहे वो गलील के शहर में वो पहाड़ हो जहां पर यीशु मसीह ने पहाड़ी वास किया, चाहे वो उस क्या है जी इलाके में जिसे देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि सामरियों का इलाका है, उस शहर में जाकर यीशु मसीह कुएं पर बैठता है वहां देखते हैं, या फिर जैतून के पहाड़ पर देखते हैं, या किसी और जगह पर बैठे देखते हैं, जब जब यीशु बैठा है उसने एक अजीब तालीम और एक जबरदस्त सच बयान किया है जो हमारी तरक्की के लिए बायस से बरकत का बायस बनता है। तो यहां पर जब हम देखते हैं छठे बाब की पहली आयत को, तो इन बातों के बाद यीशु गलील की झील यानी तिबरियास की झील के पार गया और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि जो मौजज़े वो बीमारों पर करता था उनको वो देखते थे। यीशु पहाड़ पर चढ़ गया और अपने शिगिर्दों के साथ वहां बैठा। यीशु मसीह पहाड़ पर बैठा हुआ अपने शिगिर्दों के साथ, उसके पीछे बड़ी भीड़ है और यहूदियों की ईद फसा नजदीक है, और जिससे मुराद है कि यरूशलेम शहर उसके इर्द गिर्द के इलाका के तमाम लोग क्या होंगे जी वहां पर इकट्ठे होंगे और पूरे शहर में ये तलखली मची हुई है, ये शोर मचा हुआ है कि दाऊद के घराने में से एक नबी पैदा हुआ है जो यूसुफ के घराने से है, उसकी मां का नाम मरियम है, वो गलील के शहर का रहने वाला है। बहुत पीछे इसके सोच चल रही है और लोग उसके मौजूदात को देखने के लिए आ रहे हैं कि ईद फसा में आएंगे और इस गलील के नासरी को मिलेंगे। जब हम देखते हैं बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि वो सब बड़ी भीड़ मेरे देखकर मेरे पास आते, सॉरी पीछे चलेंगे, बस जब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर देखा कि मेरे पास बड़ी भीड़ आ रही है तो फिलिप्पस से कहा कि इनके खाने के लिए क्या करो जी रोटियां मोल लें, इनके खाने का इंतजाम किया जाए। और खुदा का बंदा फिलिप्पस क्या कहता है, फिलिप्पस क्या कहता है, हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें, क्योंकि ये बड़ी तादाद थी। इस मौजे को आप सुन चुके हैं कि इस मौजे में क्या हुआ है, खुदावंद यीशु मसीह ने 5,000 से ज्यादा क्या है लोगों को शेयर किया है। आज मैं चाहता हूं कि इस मौजे को देखते हैं कि वो क्यों हुआ, क्योंकि मौजे के पीछे वजह जरूरी है, ईमान जरूरी है कि क्यों मौजा वकूल परीजा होता है, क्यों मौजे होते हैं। अगर मौजे की ख्वाहिश नहीं होगी तो मौजा वकूल परीजा नहीं होगा। तो यहां पर हम क्या देखते हैं, फिलिप्पस ने कहा हम इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें, मगर उसने उसे आजमाने के लिए यह कहा कि क्योंकि वो आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। जब जब यीशु मसीह हमें कुछ करने को कहता है तो उस करने के लिए वो सारे लवाजमात मुहैया करता है। अगर यीशु किसी को अपनी खिदमत के लिए बुलाए तो उसको खिदमत के लिए तमाम वसाइल मुहैया करेगा। अगर यीशु किसी को कहे कि पहाड़ी इलाके में जाना है तो पहाड़ों को चढ़ने के लिए वो पहाड़ी जूते मुहैया करेगा। अगर यीशु मसीह किसी को आग की भट्टी में कहना कहता है कि आग की भट्टी में मेरे लिए उतरो तो उस आग की भट्टी में वैसे वो बचाने की कुदरत और ताकत का इंतजाम पहले से करके रखता है। अगर वो किसी को कहे कि मेरे लिए जाओ जाकर गवाह बनो तो उसके लिए वो अपना जोर भी मुहैया करता है। फिलिप्पस को खुदावन ने कहा कि इनके लिए खाने का इंतजाम करो, और फिलिप्पस इंसान होते हुए इस बात को भूल चुका है कि मैं किसकी हजूरी में किसके सामने खड़ा हूं। बहुत दफा हम भी जब खुदा की हजूरी में आते हैं, जब उसके हाथ के कामों को रूबरू देखते हैं, उसके अजीब काम को देखते हैं, हम बहुत दफा यही सवाल करते हैं, हम कहां से ये मुमकिन करें कि ये काम जो तू हमसे कहता है खुदावन किया जाए। सो फिलिप्पस, यीशु मसीह ने कहा इनके खाने के लिए इंतजाम करो, और फिलिप्पस आगे से क्या कहता है, इनके खाने के लिए कहां से रोटियां मोल लें। यीशु जानता था कि वो क्या करना चाहता है। बहुत दफा वो हमारी जिंदगियों में भी हमसे कुछ कहता है, हमसे कुछ तकाजा करता है, हमसे कुछ पूछता है कि भाई ये करो। याद है मूसा का वाकया? मूसा पहले 40 साल बादशाह के घर में पला बड़ा, सब कुछ उसने सीखा, हर तरह का हुनर उसने हासिल किया, और जब उससे कत्ल हुआ, जब उसने अपने यहूदी भाई को बचाने की खातर एक मिस्री को रेत के ढेर में दबा दिया अपने हाथों से, उसकी हो सकता है मनकी को तोड़ दिया हो, जब उसे कत्ल करके भागता है मुल्के मिस्र से मदियान के उन बियाबानों में, वहां पर वो 40 साल की खिदमत कर रहा है, और उन 40 साल के दौरान खुदावन खुदा उसे बुलाता है और कहता है कि जा जाकर मेरे लोगों को क्या कर, आजाद कर। जब खुदा ने उसे किसी बात का तकाजा किया और मूसा का जवाब ठीक फिलिप्स की तरह है, वो मेरा यकीन नहीं करेंगे, खुदा तुझे समझ नहीं आ रही, मैं वहां से 40 साल पहले भाग चुका हूं, मैंने वहां पर किसी को कत्ल किया है, मिस्र की दीवारों पर मेरे इश्तिहार लगे हुए हैं कि मूसा ने एक मिस्री को मारा है, जो कोई उसे पाए उसको बादशाह के सामने हाजिर किया जाए, वहां पर यह सारी सोच चल रही है खुदा और मूसा के दरमियान। मूसा को खुदा कहता है कि जा जाकर मेरे लोगों को रहा कर, जा मेरे लोगों को आजाद कर, मैंने उनका रोना धोना सुना है, उनको बता कि मैंने तुम्हें भेजा है। और वो कहता है बहाने पर बहाना, मैं कैसे जाऊं, मैं बोल नहीं सकता, किसी और को भेज दे। और खुदा वहां पर क्या है, मौजज़ाना तौर पर उससे बात कर रहा है कि एक छोटी सी जलती हुई झाड़ी में से खुदा बोल रहा है, वो उसकी सामने आंखों के मौजज़ाना तौर पर मौजूद है, उसकी हजूरी वहां पर क्या ही बयान से बाहर है कि वो देखते हुए सुनते हुए इस बात के शक में है कि मैं कैसे जाऊं। मूसा जो नजारा देख रहा है कि वो आग उस झाड़ी को भस्म नहीं कर रही, उसमें से जो आवाज आ रही है उसको सुन रहा है, लेकिन जब उससे कहा गया कि जा जाकर ये काम कर, तो वो हैरान परेशान और घबराया हुआ है। और खुदा उससे क्या कहता है, तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है कि ये वो लाठी है जिससे मैं अपनी भेड़ बकरियों को चराता हूं, जिससे मैं अपनी भेड़ बकरियों को दुरुस्त सीमत में लेकर जाता हूं, ये वो मेरा आशा है जिससे अगर कोई जंगली जानवर आ जाए तो मैं अपनी भेड़ों को बचाने के लिए मारता भी हूं, ये वो डंडा है जिससे क्या करता हूं जी, अगर मैं थक जाऊं तो मैं उसकी टेक पर खड़ा हो सकता हूं, ये वो डंडा है जो बहुत से दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुदा ने कहा तेरे हाथ में कहा, उसने कहा लाठी। खुदा ने कहा इस लाठी को जरा फेंक, और वो उस लाठी को फेंकता है, और वो लाठी क्या बन जाती है, सांप बन जाती है। मूसा इस तीसरे मौजज़े को खुदा की हजूरी में खड़ा हुआ देखकर फिर हैरान होता है, और खुदा कहता है इसे उठा। जैसे ही वो उस लाठी को पकड़ता है वो सांप लाठी बन जाता है। फिर खुदा वहां पर उसे कहता है कि अपने हाथ को अपने पहलू में अपने कपड़े में छुपा ले और अपने दामन में छुपा ले, और वो छुपाता है और कहता है बाहर निकाल, और वो हाथ उसका बर्फ की मानत सफेद हो जाता है। यहां पर भी खुदा से मौजज़ाना तौर पर बयान कर रहा है कि मैं जो कहने वाला हूं, जो करवाने वाला हूं, उसके लिए ना सिर्फ तुझे भेजूंगा, उसका इंतजाम करूंगा, अपनी कुदरत मुहैया करूंगा, और तेरे साथ खुद जाऊंगा, और तू उनके लिए खुदा होगा। वो हाथ निकालता है, हाथ बर्फ की मानस सफेद हो जाता है, फिर नीचे डालता है, खुदा कहता है फिर निकाल, और फिर वो वैसा ही तंदुरुस्त चंगा भला हो जाता है, और खुदा कहता है जा जाकर उनको आजाद कर। और खुदा से वो फिर सवाल करता है, मैं क्या कहूं कि किसने मुझे भेजा है? खुदा कहता है उनको जाकर बता के मैं जो हूं सो हूं ने मुझे भेजा है, ये मेरा नाम है, ये मेरा नाम है। खुदा ने उनको उसको अपनी शनाख्त बताई जिससे इसराइली वाकिफ थे कि उस जैसा कोई और है ही नहीं, और वो उनको भूला नहीं। सो मूसा को अगर मिस्र में भेजने के लिए खुदा ने बुलाया तो मिस्र के देवी देवताओं का सामना करने के लिए उसने उसे अपना इख्तियार दिया, उसने उसे अपना कलाम दिया, उसने उसको अपनी रहनुमाई दी कि जाकर मुल्क मिस्र के तमाम देवी देवताओं और खुदाओं को जिनकी इबादत मिस्री करते हैं याद दिला दे, दिखा दे कि जिस खुदा की मूसा इबादत करता है उनको जाकर कहे कि तुम अपने खुदाओं को सामने लेकर आओ, मैं अपने खुदा के नाम से तुम्हारे दरमियान खड़ा हूंगा। और आज देखेंगे कि किसका खुदा क्या है जी, जोरावर है। मूसा जाता है यहां पर फिलिपस से बात यीशु मसीह करते हुए कहता है इनको खाने के लिए रोटियां दो, इनका इंतजाम करो। फिलिपस कहता है कि कहां से रोटियां लेकर आऊं, कहां से रोटियां मोल लें। यीशु ने उसे जमाने के लिए कहा। फिलिपस ने क्या कहा इंसान होते हुए, फिलिपस ने छठी सातवीं आयत में लिखा है फिलिपस ने उसे जवाब दिया कि 200 दिनार की रोटियां इनके लिए काफी ना होगी कि हर एक को थोड़ी सी मिल जाए। फिलिपस ऐसे बात कर रहा है जैसे वो बैंक का क्या है जी, अकाउंटेंट है, जैसे एक चर्च का खजांची है कि इनके के पैसों के विच किस तरह से इंतजाम कर सकते कि एडा वड्डा प्रोग्राम साढ़े को 200 दिनार ते 5000 ते लोग जड़े मरता जिन्होंने गिन सकते हैं ते उस तो अलावा बहुत ज्यादा। यीशु मसीह क्या करता है, उसके शिगिर्दों में से एक ने यानी शमौन पत्रस के भाई इंद्रियास ने कहा, जब वो गुफ्तगू कर रहा है यीशु मसीह के साथ ठीक जैसे मूसा की और खुदा की गुफ्तगू हो रही है, खुदा कहता है तेरे पास क्या है, वो कहता है मेरे पास चरवाहे की लाठी है। खुदावंद खुदा यीशु मसीह फिलिपस से कहता है इनको खाने के लिए क्या करो जी, खुराक मुहैया करो। और वो इस बात के नतीजे पर उतरता है, इससे पहले यीशु मुझसे पूछे कि तुम्हारे पास क्या है, मैं खुद ही बता देता हूं कि यीशु हमारे पास 200 दिनार है और 200 दिनार की रोटियां काफी नहीं होगी कि इस बड़ी भीड़ को रचा सके, थोड़ी थोड़ी मिलेंगी, इतनी काफी नहीं है। वहां पर उसका भाई इंद्रियास का भाई शमौन खड़ा है, वो सारी गुफ्तगू को देख रहा है दूर खड़ोते हुए खड़े हुए, और वो इस गुफ्तगू में अपने आप को दाखिल करता है और आगे क्या कहता है। यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है। एक के पास 200 दिनार है, वो कह रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकती, दूसरे के पास कुछ भी नहीं, लेकिन किसी को देखकर कहता है इसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ये भी क्या कर सकती हैं। और वो भूल चुके हैं कि ये वही है जिसने थोड़े दिन पहले क्या किया है जी, अजीब मौजजा किया है, ये वही है जिसने बेवा के बेटे को जिंदा किया, ये वही है जिसने 38 बरस के बीमार को कहा कि उठ और चल फिर और जाकर गवाही दे, ये वही है जिसने 10 कोढ़ियों को कहा कि जाकर अपने तई क्या करो जी काहिनों को दिखाओ, ये वही है जिसने उनको कहा था कि पतरस शमौन इंद्रियास यहां पर जाल डालो तो तुम पकड़ोगे, और उन्होंने कहा कि हम तो सारी रात काम करते रहे, यीशु ने कहा यहां पर जाल डालो तो पकड़ोगे। वो भूल चुके हैं कि उसके एक कहने से उनके जाल फटना शुरू हो गए, उनके पास जगह नहीं थी, और वो उस बात को भूल चुके हैं कि वो उस खुदा की हजूरी में खड़े हैं जो क्या है जी, मौजज़ात का खुदा है। बहुत दफा हम भी भूल जाते हैं कि हम किस खुदा की इबादत करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में खुदा को छोड़कर अपने इंतजाम पर एतमाद करते हैं, हम क्या करते हैं, मूसा की तरह, फिलिपस की तरह, इंद्रियास के भाई शमौन की तरह कहते हैं ये थोड़ा सा क्या है, कुछ भी नहीं। बहुत दफा हम कहते हैं मेरी जिंदगी क्या है, अगर मैं इस इतवार चर्च नहीं जाऊंगी तो क्या पहाड़ गिर जाएगा। बहुत बड़ा पहाड़ गिर जाता है जब कोई खुदा के कलाम को सुनने के लिए कान नहीं लगाता। इससे क्या नुकसान होगा अगर मैं जुमे की इबादत में नहीं जाती या नहीं जाता, आज इस जैसे कलाम को सुनने का मौका बंदा नहीं पाता। तो यहां पर शमौन क्या कहता है, दूसरा कहता है 200 दिनार की रोटियां कम पड़ जाएंगी, और ये कहता है कि 5 रोटियां 2 मछलियां जौ की इसमें क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। और यीशु ने जब उनके हालात को देखा कि इनको सिखाने की जरूरत है, इनको बताने की जरूरत है कि जिसके पीछे बड़ी भीड़ आ रही है वो अपने बीमारों को ला रही है, मौजात हो रहे हैं। एक जगह का ये वाक्य है जहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, 7,000 लोगों को शेर किया। और उस वाक्य को पढ़ते हैं तो लिखा है कि 2-3 दिन से लोग उसके पीछे चल फिर रहे हैं। यीशु ने कहा कि इनको खाना दो। शिगिर्द वहां पर कहते हैं यीशु इनको इर्द गिर्द के गांव में भेज दे, अपना अपना इंतजाम खुद ही कर लें जाके। यीशु ने कहा नहीं, यीशु ने कहा नहीं, इनके लिए खाने का इंतजाम करो। और वहां पर यीशु मसीह ने क्या किया, 7,000 से ज्यादा लोगों को क्या कर दिया जी, शेर कर दिया। यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मुझे ही कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। एक के पास 200 दिनार है और वो उससे कुछ नहीं करना चाहता, दूसरे ने कहा कि किसी के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं और वो यकीन नहीं कर रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं 200 दिनार को नहीं लूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं 100 दिनार को नहीं लूंगा। मैं यहां पर यह नहीं कहूंगा कि चंदे की टोकरी फेरी जाए, अगर एक एक बंदा एक एक दिनार देगा तो यहां से हम 5,000 दिनार इकट्ठे कर लेंगे ताकि इन्हीं के पैसे से इन्हीं को खिला दे। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह क्या करता है, यीशु मसीह सबसे छोटी चीज को लेता है जो दोनों की नजर में और बजात खुद उस देने वाले की नजर में क्या है जी, हकीर और नाचीज है। और वो छोटा लड़का क्या करता है, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, ये इतने लोगों में क्या है, यीशु ने कहा लोगों को बिठाओ, वक्त आ चुका है कि मैं अपना जलाल जाहिर करूं, लोगों को बिठाओ। उस जगह बहुत घास थी, पशुओं तखमीनन जो मर्द थे, सिर्फ मर्द का बयान किया गया है, 5,000 थे बैठ गए। और यीशु ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से भी जिस कदर चाहता था बांट दी। आज बहुत से फजूल लोग आपको मिलेंगे, वो कहते हैं कि जी ये जो मौजदा है यीशु मसीह ने पत्रा किस तरह किया, हर कोई को कहा कि जी अपनी अपनी दोपहर की रोटी कर दो तो कह देता खाओ तो मौजदा हो गया, ये बेवकूफी की बात है। यीशु मसीह के कलाम में लिखा है कि वहां पर एक लड़का था जिसके पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी, यीशु ने वो ली, शुक्र करके तोड़ी, उनको बिठाया, देना शुरू कर दी, और क्या किया जी, बरकत दी। आज हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हमारी जिंदगी को लेना चाहता है और लेकर उसे क्या करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। और तोड़कर जब वो बरकत देगा तो हम ना सिर्फ 5,000 के लिए, 10,000 के लिए, हजारों हजार के लिए क्या बन सकते हैं जी, बरकत का बायस बन सकते हैं, लेकिन जरूरी है कि पहले उसे कुछ दिया जाए ताकि वो उसे लेकर तोड़े, उसे बरकत दे, फिर उसे जब तोड़ा जाए तो वो क्या होगा जी, लाखों लाखों के लिए क्या होगा जी, बरकत का बायस होगा। और खुदा ने ऐसा ही किया मूसा की जिंदगी में, उसके पहले 40 साल में उसने क्या किया, खुदा ने उसे ले लिया और अगले 40 साल में उसे बियाबान में तोड़ा, और आखिरी 40 साल में उसने बनी इसराइल कौम के लिए उसे बरकत बना दिया। और आज वो बरकत की कहानी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है कि खुदा ने मिस्रियों के खुदा को शर्मिंदा कर दिया, खुदा ने जो इब्राहिम इसहाक यकूब का खुदा है अपने लोगों को एक मामूली से बंदा के वसीला से क़यादत करते हुए गुलामी से निकालकर वादा की सरजमीन की तरफ ले गया। और यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, इनको बिठाओ, वो रोटियां लेता है, उन पर बरकत चाहता है और बांटना शुरू करता है। ये हमारी जिंदगी का क्या है जी, खुलासा है। मूसा के पास चरवाहे का आसा था, दाऊद के पास वो फलाखन और एक पत्थर था, राख पाशा के पास लाल रंग का डोरा था, मरियम के पास ढपली थी, इस छोटे के पास, छोटे लड़के के पास पांच रोटियां और जौ की, पांच रोटियां और दो मछलियां थी। आज आप उस खुदा के हाथ में क्या देंगे कि वो आपको ले बरकत दे और तोड़कर कहे कि इनको बिठाओ और सबको शेयर करे। आप आज से क्या ऑफर करेंगे? क्योंकि ये कहानी क्या है जी, सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाई गई, इसीलिए सुनी नहीं गई, इसीलिए लिखी नहीं गई कि हाँ जी किसी के लिए 5000 का मौजजा हो गया। इस मौजजे को होने में क्या है जी, एक छोटे बच्चे ने क्या की है जी, पहल की है। क्योंकि अगर यीशु सिर्फ फिलिपस पर भरोसा करता तो उसका 200 दिनार काफी नहीं था। फिलिपस अगर देखते हैं कि कहता है कि ये काफी नहीं तो मौजजा नहीं होना था। शमाऊं को देखते हैं तो वो कहता है कि ये पांच रोटियां दो मछलियां, अगर यीशु मसीह इसकी बात को मान लेता तो मौजजा नहीं होना था। यीशु मसीह ने उस छोटे लड़के की आंखों में देखा होगा कि ये है वो जो सारा वाक्या बयान कर रहा है कि खुदा की बादशाही छोटे बच्चे की मानद है, कि छोटे बच्चे की मानद यकीन कर लो, जो कुछ मैं कह रहा हूं तो तुम्हारे लिए अजीब अजीब काम होंगे। क्या आज हम छोटे बच्चे की मानद उस पर यकीन करते हैं? 100 में से 90% नहीं, 100 में से 90% यकीन नहीं करते। हम खुदा को कुछ देना नहीं चाहते और जब खुदा को कुछ देना नहीं चाहते वो उसे क्या करता है, दुगना तिगना चौगना नहीं करता, और जब तिगना चौगना नहीं होता वो किसी के लिए बरकत का बायस नहीं होता। हम अपने 200 दिनार का डंडोरा पीटते रहते हैं कि 200 दिनार क्या करेंगे। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पहली मीटिंग जो हमने, जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, हमारा जो जीसस फॉलोअर ग्रुप था, जो पहली मीटिंग, एक बंदा था उसका नाम अलेक्जेंडर शशील था, वो पहली दफा जब आया आरिफवाला में, उसका इंतजाम किया गया। हमारे पास खजाने में पता कितने पैसे थे, 36 रुपए। सिर्फ खजाने में जो नौजवानों ने हमने शुरू किया हुआ था ग्रुप, 36 रुपए थे। सबने कहना शुरू कर दिया कि ये कैसे होगा, उस बंदे के आने खाने का, जाने का और टेंटों का, साउंड सिस्टम का और फिर सारी टीम को खिलाने का इंतजाम कहां से होगा, इसके लिए बहुत पैसों की जरूरत है। 36 रुपए को खुदा ने 3600 किया, 3600 को खुदावन ने 36,000 बना दिया। और जब ये सारा प्रोग्राम हो गया, उस बंदे को हदिया दिया गया, टेंटों वालों को हदिया दिया, खाना बढ़ गया, और बाद में जब सारा प्रोग्राम हो गया तो हमारे खजाने में 36 रुपए से कितने बच गए, 3600 रुपए खजाने में, जो खुदा के जलाल के लिए काम शुरू किया गया था बाकी थे। और ये 36 रुपए कभी भी 3600 ना होते अगर यकीन ना किया जाता, ये भीड़ कभी भी शेर ना होती अगर छोटा बच्चा अपनी जौ की पांच रोटियां और दो मछलियां ना देता, वो करोड़ों लोग कभी भी मिस्र से ना निकलते अगर मूसा उस बात का यकीन ना करता जो खुदा ने उससे कही थी। आज हमसे खुदा कहता है कि मुझे क्या दोगे, मुझे दो, मैं तुमको उसको अजीब तरीके से क्या करूंगा, इस्तेमाल करूंगा। मेरी तालीम थोड़ी है, मेरे पास आओ मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा। मैं गरीब घराने से हूं, मेरे पास आओ मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूं। मेरा बाप ये करता है, मेरी माँ ये करती है, मैं इस खानदान से हूं, मेरे पास आओ मैं ये करूंगा। खुदावन खुदा कहता है आओ मैं तुमको भेजूंगा। अगर वो पहाड़ों पर भेजेगा तो पहाड़ों पर चलने के लिए जूते देगा, अगर वो शहर में भेजेगा तो शहर में भेजने के लिए क्या देगा जी, दलेरी देगा। जाने वाले बने, जाने वाले बने, भेजने वाला सब इंतजाम रखता है। ये बात मैंने आजमाई हुई है, इसलिए खुदा को आजमा कर देखें वो कैसा जोरावर है। आजमा कर देखें उसे, बदी के साथ नहीं, कि मेरी बोटी मार दे खुदावंद खुदा, मेरा अब्बा मार दे खुदावंद खुदा, मेरा पड़ोसी मार दे खुदावंद खुदा। बदी से नहीं आजमाना, भलाई से आजमा कर देखें खुदावन खुदा क्या कहता है जी, मैं जवाब दूंगा। आजमा कर देखें खुदा को। क्योंकि वो चाहता है कि उसे आजमाया जाए। उसने मूसा को इसीलिए चुना कि वो मिस्र के तमाम देवी देवताओं के सामने इतना बड़ा जिगरा रख के अपनी वो जिंदगी में शायद कांपता हो जब भी खड़ा हो, लेकिन उसे यकीन था कि जिसने मुझे अपना जलाल दिखाया है चलती हुई झाड़ी में, उस लाठी के वसीला से, उस मौजज़े के वसीला से जो मुझसे वो बोला है, वो वाकया ही हकीकी खुदा है। आपकी जिंदगी में बहुत से मौजज़ात हैं, मौजज़ात को ना भूलें। बहुत दफा हम अपनी जिंदगी का मौजज़ा भूल जाते हैं और फिर कहते हैं कहां से करेंगे, कितना करेंगे, कवश वाले को चले चल रहे हैं, नीता वाले को चले जाने हैं, किसान वाले को चले चल रहे हैं, या किसी फलां को चले चल रहे हैं, और साडा इंतजाम करेगा। तब हम क्या करते हैं, खुदा की कुदरत को खुद कहते हैं तेनू मौका नहीं देना, खुदा हम तेनू मौका नहीं देना, असी आप ही कुछ करने की कोशिश करांगे, साडा काम वा असी आप ही सवारांगे। सो क्या हुआ, खुदावंद खुदा ने 5,000 को शेर किया और वो सारे शेर हो गए, और जब शेर हो गए तो एक एक शगिर्द के लिए यीशु मसीह ने क्या किया, याद हानि की टोकरी, कि तो सालगिरह ते जाने ना फ्रूट की टोकरी बना के लिजाने, मंगनी करन लई जाते हैं, उहदे विच अपना कहिंदे जी जुत्ती भी ते मेहंदी भी ते बटना भी ते फलां भी ते टमकाण भी, कि हाँ पड़ोसियों को पता लगे कि जी मेहंदी की टोकरी लैके आए हैं ना, ये मंगनी की जी टोकरी लैके आए हैं, इन्होंने वो लड्डू तो सेब तो हर एक चीज़ रखी ताकि याद रहे कि फलां घर के मंगनी करने वाले आए सी, ताकि कोई भुले ना। खुदावंद यीशु मसीह क्या करता है, वो जानता है कि ये भूल ना जाए, सबको शेयर करके हर एक ने अपनी क्या कहते हैं जी जरूरत से ज्यादा खाया होगा, ये जो मछली और ये जो रोटी उन्होंने खाई है ना, इससे पहले अगर किसी नस्ल ने कोई खाई है रोटी और मछली और बटेरे, तो वो बनी इसराइल ने बियाबान में खाए हैं, इससे पहले कभी भी ऐसी खुराक किसी और ने नहीं खाई थी। यीशु मसीह ने एक दफा पानी को मैं बनाया, उस जैसी मैं आज तक किसी ने नहीं पी, लेकिन हमको मौका मिलेगा जब हम उसकी बादशाही में होंगे। ये रोटी, ये जौ की रोटी और मछलियां किसी और को खाने को नहीं मिली, ऐसी खुराक किसी और को नहीं मिली। यीशु मसीह ने कहा ये इसे भी भूल जाएंगे, इनके लिए मैं टोकरी भेजूंगा, अपनी याद दहाने की टोकरी। सब खा पी चुके हैं, सब शेर हो चुके हैं, तो कितनी टोकरियां बड़ी जी, याद है किसी को जी कितनी टोकरियां बड़ी थी, आवाज दी है कितनी, कितनी जी, यीशु के शिगिर्द कितने थे, इसराइल के कबीले कितने हैं, और नए यरूशलेम में कितने बुजुर्ग बैठे होंगे, और ये 12 की 12 टोकरियां हर एक कबीले के लिए थी कि याद रखो कि वो खुदा जो मूसा के लिए बियाबान में मन मुहैया करता रहा, आज भी वो बियाबान में आपके लिए मन मुहैया करके कसरत से भेजेगा ताकि तुम ना भूलो। 12 टोकरियां हर एक कबीले ली, हर एक शगिर्द ली, कि भूलना नहीं, भूलना नहीं। हमें भी यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जब मौजज़ा करता है तो वो मौजज़े से बढ़कर दुगना मौजज़ा करता है। सो उसके मौजज़ों को ना भूलें, ना भूलें, क्योंकि अगर हम भूलेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। सो खुदावन खुदा आज आपको इस कलाम के वसीला से कुवत और ताकत दे कि आप अपनी जिंदगी में वो चीज उसके सामने कहें कि ये मेरी तरफ से तेरे लिए खुदावंद खुदा तोहफा है। वो आपकी कमजोरी हो सकती है, आपका जोर हो सकता है, वो आपकी शर्मिंदगी हो सकती है, आपका खौफ हो सकता है, वो आपका कुछ भी हो सकता है, उसे कहें मैं तुझे देना चाहती हूं, देना चाहता हूं, इसे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। आए हम खुदा के जोर झुके दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए, इस कलाम के वसीला से खुदावंद खुदा हम सबको खुदावंद खुदा बरकत और कुवत दे, ताकि खुदावंद खुदा हम तेरे खुदावंद खुदा मौजज़ात को ना भूलें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन।